ان الدين عند الله الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی بیس پر قیامت کے دن کا کرائیٹیرین صرف مسلمان ہونا ہے. آپ کہتے ہیں کیا مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ نہیں, یہ غلط فہمی ہے. یہ سمجھ لیجئے, یہ کانسیپٹ اس لیے ذرا زور لگا رہی ہوں کہ چلے دورہ قرآن میں کانسیپٹس تو کلیئر ہو کے جائیں ہمارے. دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک, آپ پورے دور کو دنیا کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے, حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تک کا دور, ٹھیک ہے, کلیئر ہے, یہ ون ٹائم زون ہے. سیکنڈ سائڈ پہ لکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے یعنی مبعوث ہونے, آپ کو نبوت ملنے سے قیامت تک کا لوگ, یہ دو ڈفرنٹ دور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا, جیسے ہر ملک کچھ سالوں میں اپنی قوانین چینج کر سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا لا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پہلے کے لوگ جو اپنے دور کے نبی کو مان لیں, اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مان لیں, دے کالڈ ایز مسلم, وہ سب مسلم تھے. لفظ یہودی فرقہ واریت کا نام ہے, نصرانی فرقہ واریت کا نام ہے, بدھائزم فرقہ واریت کا نام ہے, کیونکہ ان سب کی نسبت انسانوں یا جگہوں کے ساتھ ہے. دوسری طرف وہ ٹائم زون آ گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے ہے, اس کے بارے میں واضح اور صاف اور کلیئر حدیث ہے, مسلم کی مجھے یاد آ رہی ہے, بخاری میں بھی کہیں ہوگی, اگر آپ اس کا ریفرنس لینا چاہیں بڑی خوشی سے دیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے کانوں نے سن لیا, خلاصہ بتا رہی ہوں الفاظ نبی کے نہیں ہوں گے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے, کہ جس کے کانوں نے سن لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے, اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان لا کر مسلمان نہ ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وجہ کیا؟ آپ کہیں گے تو بہت سختی کی بات ہے. وجہ یہ کہ ہر نبی نے اپنے دور کے لوگوں کو یہی میسج دیا تھا کہ ہماری نبوت ٹائم باؤنڈ ہے. کب تک ہماری ایکسپائریشن ڈیٹ ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں گے. اگر ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو ان نبیوں نے بھی آپ کو نبی ماننا تھا. تو تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں اور جو کتابیں اتری اور صحیفے اترے, ہر دور کے لوگوں کو یہ حکم تھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے. آج جو لوگ نہیں ایمان لا رہے اور پھر بھی خود کو کچھ اور کچھ اور جو بھی نام آپ کو پتہ کہتے ہیں, تو وہ اپنی کتابوں کے حکم کو نہیں مان رہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام کے سبمٹ یور سیلف, اللہ کو مانو, اس کے نبی کو مانو. اور دیکھیں مسلم واحد قوم ہے جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. چلیں بڑے نبیوں کو پیچھے کرتے ہیں, چند فیمس نبی دیکھیں, حضرت موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تین فیمس پروفٹس ہیں نا. ابراہیم کو رکھ لیجئے, ابراہیم کو تینوں گروہ مانتے ہیں, مسلم, جیوز اینڈ کرسچینس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیوز بھی مانتے ہیں, کرسچینس بھی مانتے ہیں, اور مسلم تو آف کورس مانتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں لا نفرق بین احد. آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ, کرسچینس جو خود کو کہتے ہیں وہ ابراہیم کو بھی مانتے ہیں, وہ موزیس کو بھی مانتے ہیں, وہ جیزس کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, یا اس طرح نہیں مانتے جیسے ماننا ہے. تو آپ چلیے جیوز پہ چلیے, جیوز کیا کرتے ہیں, وہ موزیس کو بس مانتے ہیں, وہ جیزس کو بھی نہیں مانتے. نعوذ باللہ, انہوں نے تو قتل کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا, آگے آئیں گی باتیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے, تو مسلمانوں پہ آ جائیے. تو مسلم, اونلی دا مسلم از دا پرسن ہر نبی کو مانتا ہے. کوئی مسلم تصور نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ کا کارٹون بنائے, کوئی مسلم اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ تورات کو جلائے اور انجیل کو پاؤں میں نیچے رکھے, کیونکہ ہم سب کو مانتے ہیں. پہلے دن ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ سبق دے دیا تھا کہ اس پر بھی مان لاتے ہیں جو ان پہ نازل ہوا اور جو ان سے پہلے اترا. تو لہٰذا اللہ کو پوری چیز چاہیے اور وہ اسلام ہے. پچھلی چیزیں راستے کی چیزیں تھیں. بس ہم دیکھیں جب شروع میں جہاز بنا وہ کیسا تھا, اب اس کی لیٹسٹ سے لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں نا. اسی طرح اسلام کے ڈفرینٹ سٹیپس گزرے, ہر دور میں بیسکس ایک ہی تھے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ خدا دو ہیں یا تین ہیں, یہ بعد میں فالوورز نے کہا. کبھی یہ نہیں ہوا کہ سود حلال ہے, جیسے آج سود حرام ہے, جیوز میں بھی حرام تھا, کرسچنز میں حرام تھا. کسی نبی کی تعلیمات میں زنا عام نہیں تھا. آج آپ دیکھیے جب آپ ویسٹرن سٹائل دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے شاید ان کو مذہباً اجازت ہے لیونگ ٹوگیدر کی, لیکن آپ انجیل کی کتابیں اور تورات کی کھول کے پڑھیں, ایسی عورتوں کے لیے اتنے غلط لفظ میں یہاں بولوں تو حیرت ہوگی آپ کو کہ زنا کو حرام قرار دیا گیا تھا تورات اور انجیل میں, اور ان کو سب پتا ہے. پھر آج یہ کیا ہو گیا, سب بچوں کے نصب کوئی نہیں, اور شادی کا کانسیپٹ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ جیسے آج ہم نے اپنی کتاب بند کر دی اور صرف جمعے کو کھولنا چاہا, اسی طرح ان لوگوں نے اپنی تورات بند کر دی. خواہش پرست ہو گئے. عام جیوز اور کرسچینز اور علماء جیوز اور کرسچین میں زمین آسمان کا فرق ہے. ये जो आपके मेरे इर्द गिर्द घरों में रहते हैं, आपके स्कूलों में जाते हैं, दे आर नॉट द पीपल इस्लाम इज टॉकिंग अबाउट दैट। वो ऐसे ही बोले हैं जैसे हम मुसलमान बोले हैं। हमें अपने इस्लाम का नहीं पता, उनको ज्यूज का नहीं पता, क्रिश्चियंस का नहीं पता। वो आपसे कोई इतना बुरा नहीं मामला रखते। असल मामला ये है कि जब दीन का इल्म हो फिर उसके बाद इंसान ना माने, तो लिहाजा अब आगे अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि वह मख्तलफ अल्लज़ीना, और इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके इन लोगों ने इख्तियार किए जिनको किताब दी गई थी। ये है असल मसला। किसी सोसाइटी में बिगाड़ का नुक्ता, यानी जो आप कहना चाहिए कि क्रुकेडनेस शुरू होती है, वो मजहबी स्कॉलर से होती है। ज्यूस का सवाल उनके स्कॉलर से हुआ, क्रिश्चियंस का सवाल उनके स्कॉलर से हुआ, और मैं माजरत के साथ कहूंगी कि आज उम्मत मुस्लिमा में बिगाड़ का रुख सारे नहीं। याद रखिए, बहुत बड़े बड़े आलिम है हमारे पास। दीन वालों की इज्जत ना करना और उनके ऊपर बात करना छोटा मुंह बड़ी बात है। सब अच्छे हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम इज जस्ट लाइक दैट वन, कि जिन्होंने आज दीन को अपने लिए खाना पीना और बना दिया, जिन्होंने दीनदारी को दुकानदारी बना दिया। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के पास बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे भी गार्ड शुरू हुआ जिनको दीन मिला था, वहीं से तो फिर लोगों के दिल फाड़े, लोगों को प्रेजरिस किया और लोगों को इस तरह से दूसरे गिरोह के खिलाफ कर दिया। फरमाया इनके इस तर्ज अमल की वजह इसके सिवा और कुछ ना थी कि उन्होंने इल्म जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। इसको हाईलाइट करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। दीन का इल्म आ जाता है लेकिन अंदर से अना का बुत नहीं जाता, ईगो, बड़े, मैं बड़ा। आप देखेंगे सूरत आले इमरान में चौथे पारे के शुरू में ही आप देखेंगे जो बिगेस्ट इस वक्त का आप कह लीजिए कि बैक्टीरिया और वायरस उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के रास्ते में आया हुआ ना, वो तफरकाबाजी है, टुकड़ों में बंटना। वहदत उम्मत नहीं, उसकी वजह ये है कि लोग अना के बुत में हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। आप देखिए कि अना एक गुब्बारे की तरह होती है, फूलते जाएंगे फूलता जाएगा। मिसाल है कि आप सब यहां बैठे हैं ना, मैं एक दूसरे को काफी हद तक देख पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर एक बड़ा सा बैलून लाकर हमारे बीच में रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि उस बैलून के पीछे आप सब छुप जाएंगे और कुछ भी नहीं नजर आएगा। इसी तरह जब इंसान की अना बड़ी होती है, मैं, आई एम, माई माई सेल्फ, तो फिर नतीजा क्या होता है कि इंसान ऐसे वक्तों में फिर सबको पीछे डालता है। ये जात की बातें, जातों को बड़ा करना, अपने नामों को बड़ा करना, ये चीज है जो उम्मत को इस वक्त तोड़ रही है। तो अल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया, और जो कि अल्लाह के अहकामात और हिदायत की इताअत से इनकार करे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं होती। और यकीन करें इस वक्त अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से हिसाब ही ले रहा है। ये नाम दुश्मनों के हैं जो हमें मार रहे हैं, पीछे हिसाब का पर्चा अल्लाह ने उनके हाथ में दिया, जो तुम इनको मार के अपने दिल को खुश कर लो। इन्होंने तुम तक ये दीन नहीं पहुंचाया, तुम मार लो इनको, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। क्या अल्लाह दुश्मनों के हाथ नहीं पकड़ सकता? पकड़ सकता है, लेकिन अल्लाह को हिसाब चुकाते देर नहीं लगती। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कह दो, मैंने और मेरे फॉलोअर्स यानी पैरोकारों ने तो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया, फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी इताअत और बंदगी कबूल कर ली? ये है हमारा दीन, सबको इस्लाम की दावत दो। अहले किताब से ना ज्यूज एंड क्रिश्चियन, और गैर अहले किताब हिंदू, बुद्धास, जो किसी दीन से ना भी जुड़े, कहते हैं जाके सबको, डू यू वॉन्ट टू बी मुस्लिम? यस ऑफ कोर्स। अगर वो कहें यस तो फकद इहतदौ, अगर हाँ कह दे तो राह रास पा गए। मैं इस आयत पर अमल कब करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ ताकि आपको मौका मिले तो आप भी करें। जहाजों के सफर में अमूमन नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्शन होता है, और मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी सिस्टर जरूर मेरे साथ बैठी होगी जिससे बाद में मैं बात करूं। तो जब थोड़ी सी बातें दुनिया की इधर उधर की कर लेते हैं तो मेरा उनसे जुमला क्या होता है, आर यू मुस्लिम? मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आर यू क्रिश्चियन, आर यू ज्यू, आर यू नॉन मुस्लिम। मुझे उसके हर हाल हुलिये से समझ आ रही होगी कि मुस्लिम नहीं, बट मैं उसको बड़े तपाक से कहती हूँ, आर यू मुस्लिम? नो आई एम दिस। फिर उसको कहती, नो नो, इस्लाम इज दैट, इज अ स्टेट ऑफ हार्ट, सबमिट टू गॉड। फिर इससे बात शुरू हो जाती है कि यू नो मुस्लिम इज नॉट अ कल्ट, मुस्लिम इज नॉट अ जस्ट लाइक अ नेम और इज जस्ट लाइक कोई मजहब, ऐसे नहीं। तो फिर इससे बात शुरू होती है। तो याद रखिए, बाय बर्थ एवरी वन इज मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने कहा हर बच्चा दीन इस्लाम पे पैदा होता है, बाद में जो ज्यूज में गया वो ज्यू बन गया, जो क्रिश्चियंस में गया क्रिश्चियन बना, लेकिन हर बंदे के अंदर एक हिदायत का छोटा सा शोला जलता है, कुछ को जरा सा मौका मिलता है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ऐसे ही लोगों को आप उनकी कहानियां पढ़ के देखिए, उनके जिंदगी के गम के सबसे बड़ा उनका गम यह कि हमारे माँ बाप कैसे मुस्लिम हो, हमारे दोस्त कैसे हैं। आज मैं फिर तकलीफ के साथ ये सारी बातें करती हूँ, अगली आयतों के आने से पहले ही बता दूं कि आज उम्मत मुस्लिमा के भी दो गिरोह बन चुके, एक बोन मुस्लिम जैसे मैं और आप माशाल्लाह हम सब, और एक न्यू मुस्लिम, रीवर्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप इन दो को जाके स्टडी कर ले, इन दोनों की खुशियां फर्क, इनके गम फर्क। जो रिवर्ट होता है, मुस्लिम होता है, सबसे पहला उसको गम क्या लग जाता है कि अच्छा मेरी माँ कैसे मुस्लिम हो, हाय मेरा बाप कैसे हो। कभी वो आंसू वाली देखिए वीडियोस हैं कि एक ब्रदर है जो रिवर्ट है, यूके से है, तो वो ऐसे रो रो के छम छम उनकी आवाज और रोते हैं, कहते हैं वो मुस्लिम तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं, हाउ बिग ब्लेसिंग यू हैव क्या कि तुम्हारे पेरेंट्स मुस्लिम है और तुम उनके लिए दुआ कर सकते हो कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बे यानी सगीरा। फिर वो उसमें सुनाते हैं कि जब मैं रिवर्ट हुआ मेरा बाप मुस्लिम नहीं था, उसको मेरे से बड़ी मोहब्बत थी लेकिन वो फौत हुआ और वो इस्लाम पे नहीं था, और अब मैं ये पेन फील करता हूँ कि क्या मैं अपने बाप के लिए दुआ भी नहीं कर सकता। कभी आपने मैंने इस नेमत को सोचा? उनके गम ये हैं कि अरबी कैसे सीखें, हमें तजवीद नहीं आती, वो कभी मौरितानिया जा रहे हैं, कभी अरब मुल्कों में जा रहे हैं, कभी मदीना यूनिवर्सिटी में, वो ये गम मनाते हैं हमारे गम के। हाय बच्चे का दान टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कराना है, हाय उसके बाल नहीं झड़ गए, उसको करना है, रंग काला हो रहा है, अच्छा ये करना है वो करना है। उनकी खुशियां क्या है? उनके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है जब उनके हाथ से कोई मुस्लिम होता है। आप कभी देखिए इनकी दावा सरगर्मियां जो करते हैं, आज जितना वेस्ट में इस्लाम आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, आपने नोट किया? रिवर्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, क्योंकि वो इस पेन से गुजर चुके हैं। वो रोते हैं, वो कहते हैं हमने वो दिन देखे हुए कि जब हम शराब के नशे में धुत होते थे और हमें खुशी नहीं होती थी, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम सुख चैन से सोते हैं। इसके बरक्स हमारी खुशियां, बच्ची की शादी कैसी होगी, इस शादी का थीम क्या होगा, जोड़ा कहाँ से बनेगा, कपड़े कहाँ से बनेंगे, जेवर किसका लें, हॉल कैसे सजे, फूल कहाँ से आएंगे, हम इन खुशियों और गमों में खो गए। ये है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जवाल की वजह। कोई आपका मेरा दुश्मन नहीं है हमारे अपने सिवा, कहते हैं ना कि सोचा था दूसरों का बात अपनी निकल गई, तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ डांट रहे हैं, अल्लाह की डांट को महसूस करें। वइन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलाग, फिर अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी, यदि तुम लोगों को इस्लाम दिखाओ, वो नहीं मानते गो अहेड, किसी और को टारगेट बना लो, बात तो करो, पैगाम तो पहुंचाओ। या हम चंद नुक्ते खुद से पूछेंगे, खुद एहतसाबी के नोट कर लीजिए। क्या मैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले यानी घर के नेबर, जॉब के नेबर, स्कूल के टीचर्स, इवन मेल मैन जो हमारे घरों में आते हैं, इवन जो मेड्स आती हैं, क्या मैं उनको इस्लाम का पैगाम दे चुकी? क्या मैंने उन तक बात पहुंचा दी? अगर नहीं पहुंचाई तो याद रखिए कल अल्लाह हमसे पूछेगा। ये तो बातें आगे जाके होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें कहेगा जाओ जन्नत में, वो नहीं जाने देंगे जिनको रोज हम उठते बैठते देखते थे और हम कहते थे डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, रिलीजन इज नेवर अ पर्सनल मैटर। रिलीजन ही तो मुसलमानों को जोड़ के एक कम्युनिटी बनाता है। अगर मेरा अपना मसला है, आपका अपना मसला है, तो क्या मुश्किल पड़ी है मगरिब पे इतनी दूर जाके मस्जिदों में सारे एक वक्त में नमाज पढ़े? आप अपने करीब हैं जल्दी पढ़ ले, दूर वाले उधर पढ़े, जो मर्जी करें। ये सारे क्यों गर्मियों में रोजे रख रहे हैं? मैं सर्दियों में रख लूं, आप बाहर में रख लें, आप जाके स्प्रिंग में रखें, आप ऑटम में रखें, आपकी मर्जी है। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर नहीं है, बल्कि एक ज्वाइंट इश्यू होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें ये तड़प दे दे, और अगर नहीं पूछा लोगों को तो कोई बात नहीं, वल्लाहु बसीरुम बिलिबाद, आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है। तुमने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, उसकी वजह क्या थी, अब तुम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज ना करो, तुम्हें नहीं उसका पते हालात। और दूसरा इसमें क्या, तुमने किसी को कहा और वो मुसलमान नहीं हुआ, तो अब उसका मामला अल्लाह पे, तुम बीच में से निकल गए हो। जो लोग अल्लाह के अहकामात और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के दर पे होते हैं जो खल्के खुदा में अदल और रास्ते का हुक्म देने के लिए उठे। देखिए ये बनी इसराइल का फेवरेट शुगल था, जब कोई उनको दीन की बात बताता तो बात ना मानो, सिंपल बात है, वो उसको मार देते थे। कल भी था, आज भी यही हालात है, जो हक बात करेगा वो नजरों में आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो उनके रास्तों में रोड़ा बनता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो नबियों को कत्ल कर चुके, इनके लिए उलमा का कत्ल कौन सी बड़ी बात होगी? इनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो, ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो गए और इनका मददगार कोई नहीं। यानी कुछ अमल अगर अपने हिसाब से किए भी थे वो भी जाया हो गए। अब आगे देखिए अंदाज जरा नोट कीजिएगा, अलम तर इल्लज़ीना उतू नसीबा मिनल किताब, तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला इनका हाल क्या है? कौन लोग हैं? इस्लाम से पहले यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियन, उनको तौरात और इंजील मिली थी, वो क्या थी? पार्ट ऑफ द बुक। युदाउन इलल किताब लियहकुमा बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरीदून, इन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है, कौन सी किताब? कुरान, ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे। तो इनमें से एक फरीक इससे मुंह फेरता है, पहलो तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। इनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं कि आतिशे दोजख तो हमें मस ना करेगी। इसको हाईलाइट कीजिए। ज्यूस का एक दावा था और वो क्या था, कल भी था आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने इस दावे पे तो खुश हैं। वो क्या कहते हैं, वी आर चोजन पीपल, हम आग में नहीं जाएंगे। लन तमसन नारो इल्ला अय्यामन मादूदा, अगर गए भी ओनली फॉर फ्यू डेज। ज्यूस के कुछ सेक्ट्स हैं, कुछ कहते हैं हम सिर्फ 7 डेज जहन्नुम में जाएंगे। कैसे कहते हैं, हर हफ्ते के दिन के बदले एक हफ्ते का दिन, इतवार के बदले इतवार का दिन, यानी पूरे वीक के बदले में हर दिन में खत्म। एक और ग्रुप है वो कहते हैं वी विल स्टे इन फायर ओनली फॉर 40 डेज। क्यों? कि हमारे इंसेस्टर्स ने 40 डे तक बछड़े की पूजा की। अल्लाह ताला कहते हैं ये तो उनका ख्याल है, वगर फी दीन हिम्मा कानु यफ्तरून, और इनके खुद साख्ता अकीदों ने इनको खुद दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी इन पर उस वक्त जब उस रोज हम उनको जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। इस रोज हर शख्स को इसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किस पर जुल्म ना होगा। भूल जाइए इधर पिछले लोगों को, गौर कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा का क्या ख्याल है। लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामन मादूदा, कभी आप मुसलमानों के ग्रोहों के करीब बैठकर तो देखिएगा वो क्या करते हैं, उनके हालात पता क्या है। वो कहते हैं हम आग में नहीं जाएंगे बिकॉज हम सैयद हैं, सैयदों की पुश्त आज़ादा है। कोई कहते हैं हम हाफिज कुरान है, हमारा एक बच्चा हाफिज है, उसने 70 लोगों को जन्नत में लेके जाना है, वो हमें भी ले जाएगा। एक तीसरा उठता वो कहता है मैं एक मौके पे बहिश्ती दरवाजे में से गुजर गया था और बस मेरे लिए तो बहिश्त लाजिम हो गई। और कोई कुछ और कोई कुछ। दिल से पूछिए क्या मैं और आप अपने आप को इस पर नहीं ले सकते। आज उम्मत मुस्लिमा को भी ये गुमान है हमने जाना जन्नत में, चूंकि मोहम्मदी है, चूंकि उम्मत मुस्लिमा में से, खाओ पियो मौज करो, ये जन्नत में जाएंगे काफिर, हमने कहा जाना है। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ये सिर्फ दीन के धोखे हैं। कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सबसे खूबसूरत दुआ है सूरत आले इमरान की। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इस रब के साथ आपका मेरा ताल्लुक है। गज़वे खंदक के मौके पे उम्मत मुस्लिमा खंदक खोद रही थी। याद रखिए इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा भी वक्त आया, सारी पावर्स, सुपर पावर क्या छोटी पावर, सब नॉन मुस्लिम हुकूमतों ने एका कर लिया, दे ज्वाइंट टुगेदर कि हम जाके मदीना के ऊपर हमला करें और इन मुसलमानों को ख़त्म करें। आज की लैंग्वेज में कहें कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती, मुसलमानों का कोई मुल्क सोच लें और सारे दुनिया के कुफार मिल के जा रहे हैं हमला करने। मुस्लिम्स लीडर्स की उस वक्त स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसको मदद के लिए बुलाओ, उसको को उसको कॉम्प्रोमाइजिंग दिस एंड दैट, माफियां प्लीज माफ कर दें, सॉरी वी विल नॉट डू दिस, आप जो कहेंगे हम करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ये कैसे हो सकता है, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और हम अपना आप उनको दे दें, करें क्या, मुकाबला करें कैसे कर सकते हैं, का खंदक हो देंगे। सारी डिटेल सूरह अहज़ाब में आप पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इस दुआ की वजह बता रही हूँ। अब करें तो क्या करें, इतने से मुसलमान और इतना कुफर। आज आप कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, तो रिसोर्सेज तो कभी नहीं हुए। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देखिए, ऑलवेज इन एवरी वॉर मुस्लिम हमेशा थोड़े होते थे, काफिर बड़े होते थे। और सिवाय ओहद जिसका जिक्र आखिर में आएगा इस सूरत के, किसी जंग में मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ। हुनैन में भगदड़ मची थी, फैसला मुसलमानों के हक में था, एक जंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूज नहीं की। क्या F-16 थे आपके पास, न्यूक्लियर बॉम्ब था, एटम बॉम्ब था, नथिंग, ये ईमान और तवक्कुल था। सलमान फारसी वहां बैठे थे, नए नए सहाबी थे जो फारस से आए थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी हम अपने दुश्मनों से कैसे बचते हैं, जरा मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर यही करना चाहिए ना कि दुश्मन को अपने से दूर ही रखें। ये बड़ा गहरा जुमला है अगर आज के दौर के हालात से हम समझें। आज मैं और आप उम्मत मुस्लिमा मुकाबला नहीं कर सकती ना नॉन मुस्लिम मुल्कों से, तो हम उनको दूर तो रख सकते हैं, अपने बच्चों के जहन, अपने आप को। आज की सारी वॉर इंटेलेक्चुअल वॉर है, जहनी वॉर है। पहले लोग आते थे जो सरहदों पे लड़ते थे, मुल्कों पे कब्जे करते थे, आज हमारे जहन, हमारे बच्चों के जहन उनके मैदाने जंग है। तो खैर बहरहाल उनके मशवरे पे अल्लाह के नबी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। क्या कहा? कहने लगे मदीना शहर के गिर्द एक खंदक खोद देते हैं, जैसे डिचेस गहरी के, वो पार ना करें, पीछे पूरे पहाड़ है उधर से वो आ नहीं सकते। अनबिलीवेबल टारगेट था, एक एक सहाबी की जरूरत थी। उस वक्त कोई डोजर और मशीनें नहीं थी कि मिनटों में हो जाए, खुदालों से एक एक को खोदना था। वो बाद में बताऊंगी, वो सब सहाबा ने जिसमें अल्लाह के नबी भी शामिल थे। अगर उस दिन नबी सल्लम कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते, डर जाते, तो इस्लाम तो मदीना में शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता। आपने कहा नहीं, हम मुकाबला करेंगे। और फिर वहां जब खंदक खोदी और अल्लाह के नबी के पेट पे एक पत्थर, सहाबी के पेट पे भी पत्थर, आपके पेट पे दो पत्थर, वो कह रहे प्याज, ये वो जंग थी जिसमें नबी सल्लम की असर की नमाज कजा हुई और आपने कहा अल्लाह इन काफरों के घरों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलातुल वुस्ता हमसे रोक ली। तो जब खंदक खोदी तो एक बड़ा सा पत्थर बीच में आ गया। जो सहाबा वहां साइंड थे उनसे वो खुद नहीं रहा, उन्होंने आके अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी ये पत्थर नहीं हट रहा। कहा पीछे हटो, मैं करूंगा। फिर आपने एक कुदाल मारा और उसमें से एक टुकड़ा उड़ा, फिर दूसरा मारा, चंद मिनट में वो पत्थर खत्म। और हर टुकड़ा जब गिरा आपने कहा अल्लाह ने मुझे फारस की चाबियां दिखा दी, अल्लाह ने मुझे रोम की चाबियां दिखा दी, कैसरो किसरा को दिखा दिया। तो जो मुनाफिक तुम्हारे लोग पास थे वो मजाक करने लगे, देखो पेट पे पत्थर बंधे में वॉशरूम तक में जा नहीं सकते, पत्थर खोद के अपना दिफा करें, और ख्वाब ये बड़े बड़े महल्लात के देख रहे हैं। तो उस पर आयत उतरी थी कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्की, तुम्हारे पेट पे पत्थर बंधे में अल्लाह के पास तो बहुत कुछ है। आइए इसको मिलके पढ़ते हैं, दुआ की तरफ पढ़ना है तो दर्द पैदा करें और दुआ करें। आज वही मालिकुल मुल्क उम्मत मुस्लिमा का हाथ पकड़ेगा तो सारे खजाने हमारे हैं। अभी तो आपने अरबी में पढ़ी है ना, आप इसके तर्जमे पे गौर करें। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक मिनट दो बिल्कुल साइलेंस, अपने से बातें करें, रब से कहें कि अल्लाह ताला हमें बात समझ आ रही है, आप तो हमारी मदद फरमा। क्योंकि दुआओं के जरिए हम अल्लाह की रहमत को जोश में ला सकते हैं। जब अल्लाह की रहमत मदद हमारे शामले हाल होगी ना, तो कोई हमारा बाल का वीका नहीं कर सकता। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जैसे उस दौर में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत की, अल्लाह ताला आज भी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और हमें इसमें अपना हिस्सा डालने वाला बनाए। खंदक ऐसे नहीं खुद गई थी, आज जहनी खंदकें खोदने की जरूरत है। आज हमें अपने बच्चों के अफकार और उनकी सोचों को साफ रखना है, तो हमें अपने आप को इस तरह से इन तमाम चीजों से दूर करना है कि जिसकी वजह से हर तरफ से हम मुश्किलात में पड़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद आगे अगली आयतों में देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। देखिए यहां से अब आपको वो मौजू समझ आएगा जिसको अकीदे की जुबान में अलविला वलबरा कहते हैं। विला कहते हैं विलायत, दोस्ती, और बरा कहते हैं बेजारी, यानी दोस्ती और दुश्मनी का इस्लामी मिजाज। अल्लाह सुबहान तआला क्या कहते हैं कि मुसलमान की दोस्ती किन हदूद तक नॉन मुस्लिम के साथ होनी चाहिए। यहां सिर्फ हम आयतों से गुजरेंगे क्योंकि ये मौजू आगे डिटेल से आएगा, तो वहां हम जाकर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। ला यत्तखिज़ुल मुमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनी अहले ईमान को छोड़कर कुफार को अपना दोस्त और रफीक हरगिज न बनाए। वमन यफअल ज़ालिक फलैस मिन अल्लाह फी शैइन, और जो कोई ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये मुआफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। इसको हाईलाइट करें, दो दफा ये आयत का टुकड़ा आएगा, वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाह नफ्स, दुश्मनों के साथ दोस्ती करते हुए अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें डराता है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और तुम्हें इसी की तरफ पलट कर जाना है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहर हाल इसे जानता है। जमीन व आसमान की कोई चीज इसके इल्म से बाकिर नहीं और इसका इक्तदार हर चीज पर हावी है। वो दिन आने वाला जब हर नफ्स अपने किए का मजा चखेगा। वमा मिलत मिन सुइन तवद्दुलौ अन्नबैनहा वबैनहु अमदं बईदा, और ख्वाह इसने भलाई की हो या बुराई, उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा, काश अभी ये दिन इससे बहुत दूर होता। फिर दोबारा कहा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, बताइए इससे भी कोई बड़ी चीज है जिससे अल्लाह में डरा सकता है? वो लोग जो जहन्नुम का सुन के भी नहीं डरते ना, जो आग का सुन के नहीं डरते, जो पुल सरात पे खड़े होने का सुन के नहीं डरते, उनको चांस दिया जा रहा है कि फिर अल्लाह की जात से डर जाओ। वल्लाहु रऊफुम बिलिबाद, आप डर गए तो अल्लाह ने फौरन खुशखबरी दे दी कि वो अपने बंदों का नहायत खैर ख्वाह है। याद रखिए, वलीमन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नत, जो अल्लाह से डरेगा वो बचेगा। और अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी नेमत है। ये मांगिए, ये मांगने वाली चीजें हैं, इंजॉय करें कि अल्लाह तू मुझे अपना खौफ दे दे, ए अल्लाह मुझे अपना खौफ दे। यही खौफ इंसान से अमल करवाता है। और फरमाया नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, मैं यहाँ रुकती हूँ और हम सब इसी बात पे अमल करते हैं। वहां तो नबी ने पूछना था ना, यहाँ हम खुद अपने आप से पूछ लेते हैं, क्या वाकई मैं अल्लाह से मोहब्बत रखती हूँ? दावा तो है ना और मोहब्बत भी है, तो फिर करो क्या, तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। किसकी? नबी सल्लम की। अल्लाह से मोहब्बत का क्राइटेरियन रसूल की तबाह है। और अगर रसूल की सुन्नतों को सुन के कहें छोड़ो, इट्स अ सुन्ना, जस्ट अ सुन्ना, फिर क्या होता है? लोग सुन्नतों पे नियम चाहते हैं। ये बताएं, कुरान में लिखा है कि हदीस में? यानी कुरान में फिर तो मानना ही पड़ेगा, फर्ज है। हदीस में तो इट्स ओके, इट्स ऑप्शनल। नबी से मोहब्बत के बगैर बात नहीं बनती। और अगर नबी की मोहब्बत आई तो मिलेगा क्या? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। चाहते ये कौन चाहेगा जिसको खुद अल्लाह से मोहब्बत है? और जिसको मोहब्बत नहीं वो कहेगा हु केयर्स, नहीं करता तो ना करे, मैं कौन सा करती हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा इनाम क्या मिलेगा? और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। इनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल कर लो। मुझे तो लगता है आज के मुसलमानों से भी यही कहने की जरूरत है कि जस्ट मुस्लिम बाय नेम नहीं, मुस्लिम बाय एक्शन। फिर अगर वो तुम्हारी दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जिसके रसूल की इताअत से इनकार करते हैं। है कोई तफसीर की जरूरत इस आयत की? कोई बात ना समझ आए तो मैं बोलूं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा के जवाल की एक बहुत बड़ी वजह रसूल से मोहब्बत का सिर्फ जुबानी दावा, न रंग में, न ढंग में, न चाल में, न ढाल में, न जिग में, न सोने, न जीने, न खाने, न पीने, किसी में रसूल से मिलते हुए नहीं दिखते। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें अपने रसूल अल्लाह बना दे। आज सुबह किसी का कमेंट पड़ा, ऐसे ही अपने लफ्जों में बता देती हूँ, ये जो सुन्ना फूड्स आजकल सबको जा रही होंगी ईमेल में, जिनको नहीं जा रही आप रिसेप्शन पे अपना ईमेल दोबारा चेक करवा के जाएं। डेली एक रेसिपी जा रही है जिसमें नबी गई और इसी तरह से मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह के नबी को पसंद थी, सरीद खाना, बहुत जिक्र आप सुनते हैं उसका। जहां मौका मिला आपको सारी यहां दिखा के बोल भी दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब तक पहुंच रही होंगी चीजें। तो किसी ने कमेंट दिया कि ये आइडिया कहाँ से आया, तो इतनी एनर्जी, इतना सुकून, तब मैं समझती हूँ कि वाकई अल्लाह के नबी में इतनी एनर्जी क्या थी। इंशाल्लाह आगे जाके जहाँ मौका बनता जाएगा, अभी असल में हमारी बेस बन रही है ना, इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। आगे मैं जाके इतना वक्त आपको नहीं दूंगी, लेकिन चूंकि थीम ही सारा पहले चार पारों में, ये चार पारे हम रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि फिर बात आपको समझ भी तो आ चुकी होगी ना। शुरू में खिलाना मुश्किल होता है, बच्चे गिराते हैं, जब खाने लग जाए तो फिर वो भागते चलते भी खा लेते हैं, इसलिए रिलैक्स रहे। जो आपके साथ हो रहा है वो एक तरीके की वजह से ही हो रहा है। तो मैंने फील किया कि अगर इस रमजान के अंदर हम अपने फूड सर्कल को ठीक कर लें तो रमजान के बाद बहुत सारी मसले तुम्हारे ऐसे ही हल हो चुके होंगे। तो बहुत सारे फूड कंपनीज वालों से माजरत के साथ, आपको दिन ब दिन ऐसी ऑर्गेनिक रेसिपीज मिलती रहेंगी कि जिसको आप खाने और खिलाने से अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से आगे चलते हैं आयत 33 से, चुने हुए लोगों की बात। नबियों के तस्करे हैं कि वो लोग जिनको अल्लाह चुनता है। आपको भी तो कुरान पढ़कर एक बात तो समझ आई गई होगी कि अल्लाह का मिजाज क्या है, अल्लाह ताला चाहते क्या है। यहाँ अभी तक कोई इस दौर में जो चीजें हमारे जहनों पर सवार हैं वो तो नहीं नजर आई होंगी। तो चुने हुए लोगों में कौन थे? इन अल्लाह इस्तफात मवनूहन वाल इब्राहिम वाल इमरान अल आलमीन। अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम दुनिया पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया था। अल्लाह का चुनाव रिसालत का है। आज लोग किस नाम पे चुने जाते हैं? कभी ऑस्कर अवार्ड, कभी फलां अवार्ड, कभी मिस क्वीन और ब्यूटी क्वीन, और कितने मुख्तलिफ में आ रहे हैं ना। कुछ किताबें हैं उसमें दुनिया का टॉल एज लॉन्ग एज मूछे लंबी, बाल नंगे नाहुन लंबे। सिर्फ लोग अपनी आप को मुश्किल में डालकर सिर्फ मशहूर होते हैं। अल्लाह किन को चुनता है? विक्ट्री स्टैंड पे कौन लोग जा रहे हैं अल्लाह के? कि जिनको अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए चुना था। फरमाया ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है, वो इस वक्त भी सुन रहा था। यहां मैं रोक के आपको थोड़ा सा तमहीद दे दूं, चूंकि सूरत आले इमरान जो है ये उस मौके पे नाजिल हुई थी जब नबी सल्लम के पास नजरान से कुछ क्रिश्चियंस आए थे और उन्होंने आके पूछा था कि हमें बताइए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या फर्क है। तब यहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घराने की बातें, ये जो भी किस्सा चलने लगा ये हजरत ईसा के नाना और नानी का है। आइए देखते हैं, और इसमें हमारे लिए ढेर सारे सबक है, हम जितने भी ले सके वो लेंगे। फरमाया इस कालत इमरात इमरान रब्बी नी नजर तुलकम माफी बतनी मुहर्ररा। और वो वक्त याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा, कौन थी वो? हन्ना, रिवायत में उनका नाम आता है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है, वो इस वक्त भी सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, और वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। बीवी हन्ना अपने पेट के बच्चे को अल्लाह के नाम पे मुकर्रर करती है। इसको नजरे तबर्रो कहते हैं, नेकी की नजर, मन्नत मानना, नजर मानना। रिवायत से जो बात पता चलती है कि इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, एक बेवा औरत पेट के बच्चे को अल्लाह के नाम पे लगाए, गोया के वो उस बच्चे से खुद कोई उम्मीदें रखने की बजाय कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मुझे कमा के खिलाएगा, दिस एंड दैट, क्या करती है कि अल्लाह तेरे नाम पे अपने बच्चे को वक्फ करती हूँ। ये था उरूज के दौर में मुसलमान माओं का अमल। आज अगर हम ऊपर के दौर से थोड़ा सा नीचे आए ना, यानी सहाबा का दौर, ताबईन तबा ताबईन को नीचे करें ना, तो सबसे बड़ी शख्सियत जो इस वक्त हमें दिखती है ना इस्लाम के उरूज पे, वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह थे। कोई मसलक, कोई स्कूल ऑफ थॉट है वो इमाम बुखारी की किताब से फायदा उठाता है, कि जिनके बारे में आता है कि इस जमीन पे अल्लाह की किताब के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब इमाम बुखारी की है। उनकी हिस्ट्री आप कहीं फिर पढ़ेंगे। उनकी माँ ने भी ऐसी मन्नत मानी थी, अभी ये पेट में थे और उन्होंने मन्नत मान ली थी कि अल्लाह मैं अपना बच्चा तेरे नाम पे लगाऊंगी। और जब वो पैदा हुए, अल्लाह को हुक्म देखिए कि किसी बीमारी या पैदाइशी तौर पे आंखों की बिनाई से महरूम थे। अब माँ ने क्या कहा होगा, लो जी लो नेकी की नीयत किया, देखो मुसीबतें आनी शुरू हो गई। नहीं, वो माँ फिर अल्लाह के सामने खड़ी होती है और दुआ करती है कि अल्लाह मैंने तुझसे एक चीज मांगी थी, तूने दे दी, तेरा शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन उसकी कोई एक नेमत तेरे पास रह गई है, अब बता के वो अल्लाह के नबी की हदीस किस नजरों से देखेगा। ऐसे दर्द के साथ माँ ने दुआ मांगी कि बच्चे को अल्लाह ने आंखें दे दी, और वो आंखें दी कि चांदनी रातों में किताबें लिखते थे। फतहुल कदीर उनकी जो किताब है, शरह है, उसको उन्होंने कहाँ लिखा, इतना हाफजा था कि लोगों ने उनको आजमाने के लिए हदीसों को खलत मलत करके दिया तो सारी चीजें अलग से करके रख दी। लेकिन उस एक इमाम बुखारी की माँ की उस निस्बत से कह लीजिए, या उनकी इस कोशिश से इंसानियत को फायदा कितना हुआ। आज ये देखिए, इस वक्त अगर मैं और आप ये ख्वाहिश दिल में रखे हुए हैं ना कि उम्मते मुस्लिमा का मुकद्दर बदले, पाए तो ये मैं ही कहती जाती हूँ या आपका दिल भी कहता है कि बदलने की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है ना, हमें कुछ अपने आप को बेहतर करना है ना, आज की माँ को यही मन्नतें माननी पड़ेंगी। प्रेग्नेंट सिस्टर्स के लिए ये मैसेज है, जो चीज़ आपको प्यारी होती है ना आप उसको उसी काम पे लगाते हैं। बेटा नहीं है, हाय बेटा हो क्यों बुढ़ापे का सहारा, कमाएगा काम में आएगा। बेटे बहुत से हो गए, बेटी नहीं बेटी बेटी, क्योंकि फ्रॉक पहनाने को दिल जाता है, उसके लिए पोनियां खरीदने को दिल करता है, ये भी अच्छी बात है। औलाद नहीं है तो गम के हाय बुढ़ापे में कौन पूछेगा, हाय अकेले रह जाएंगे तन्हाई लोनलीनेस। और जिसको इस्लाम प्यारा होगा वो क्या सोच के औलाद मांगेगा कि अल्लाह औलाद इसलिए दे कि इस्लाम को सर्व करे। आज की मुसलमान माएं पेट के अंदर से अपने बच्चों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें तो फिर बाहर निकलने के बाद मुश्किलात नहीं होगी, लेकिन हम तो कहते हैं ये हो कैसे सकता है। अच्छा हमारे यहाँ आप कॉमनली किसी से बाहर जाते हुए पूछे ना तो वो कहेंगे हाँ हाँ मैंने नियत की थी इसको हाफिज बनाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा आज उम्मत मुस्लिमा जो नियत करती है ना औलाद ना होने पे, या हो जाए तो वो क्या, मैं अपने इस बच्चे को हाफिज बनाऊंगी। अच्छा चार में से एक को तो जरूरी हाफिज बनाऊंगी, वे बाकी क्या, नहीं वो एक जरा आखरत तो बन जाए तो बाकी तीन का क्या कसूर है। तो सोचिए कि आज हमारी कैसे निस्बतें बदली। इसी तरह इस औरत जो बेवा भी थी अपने पेट की बच्ची को अल्लाह के नाम पे डाल रही है। अब ये वो दौर था जब बैतुल मकदस में औरतों की तालीम या औरतों की इबादत के लिए जाने का कोई रिवाज नहीं था। अब हुआ क्या, आइए जरा माँ की परेशानियां देखते हैं। फिर जब वो बच्ची इसके यहाँ पैदा हुई तो इसने कहा मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को इसकी खूब खबर थी, और वो लड़का तो लड़की की तरह हो भी नहीं सकता। हाईलाइट करिए, आज हमारा जुमला इससे ऑपोजिट होता है, हम कहते हैं लड़की कैसे लड़के जैसी हो सकती है, यही है ना कॉम्प्लेक्स। बेटियां एक से दूसरी आ जाए तो मुंह लटक जाता है, और बेटे छह से सात भी होते कहते इट्स ओके अल्लाह की रहमत है। एक तसव्वुर में होता है कि बेटे को देखकर ज्यादा खुशी होगी, अल्लाह ताला कह रहे लड़का लड़की की तरह नहीं हो। आज आप देखिए लड़कियों ने लड़कों वाले सारे काम कर लिए, जो अमूमन कुछ अदवार पहले लड़के ही करते थे लड़कियों ने वो सब कर लिए, वो सारी जॉब्स असाइन हो गई लड़कियों को भी, लेकिन आज तक कोई लड़का बच्चा पैदा नहीं कर सका, दूध नहीं पिला सका। ये है लई सज्जा करु कल उनसा, कि लड़का लड़की तरह होता ही नहीं है। खैर मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मरियम जो ये हीब्रो का लफ्ज है इसका मानी इतात गुजार और पाकीज़ा औरत। मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैताने मर्दूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूं। आखिरकार इसके रब ने इस लड़की को बखुशी कबूल कर लिया और इसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। यहां देखिए कि उस औरत ने अपनी नीयत नहीं बदली, लड़कियों को रिवाज नहीं था उस वक्त, लेकिन हजरत मरियम वो खुशकिस्मत औरत है कि जिनकी वजह से यहूद में औरतों को भी मुकाम मिला। उससे पहले औरतों को वो कोई मुकाम नहीं देते थे, अब बाप चूंकि नहीं थे और एक औरत की इज्जत और उसकी हिफाजत के लिए सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बच्ची को पालेंगे। जकरिया कौन थे, खालू थे। फरमाया जकरिया अलैहिस्सलाम जब कभी इसके पास मेहराब में जाते तो इसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाते, पूछते मरियम ये तेरे पास कहाँ से आ गया, वो जवाब देती अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआओं को सुनने वाला है। आइए हम भी ये दुआ मांगते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका जुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद्दुआ। ये दुआएं मांगे, अगर नई नस्ल को दुआओं को मांगने के बाद हासिल किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला पैदाइशी तौर पे बच्चों के अंदर खैर को बढ़ा देगा। फनादतुल मलाइका, जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देते हैं, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा, इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का जाबित होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालेहीन में शुमार किया जाएगा। जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार भला मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका और मेरी बीवी भांज है। तो मांगा क्यों था, है ना इंसान की कमजोरी, पहले दुआ मांगता है और जब हो जाए कहते हैं ये कैसे हो गया, जवाब मिला ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज़ किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दीजिए। कहा, निशानी यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारों में बात करोगे, यानी इसके अलावा बात नहीं कर सकोगे। क्यों भाई? क्योंकि अल्लाह की नेमतों का एहसास बंदे मोमिन की जुबान को बंद कर देता है। हमें पता चले इतने साल की उम्र में औलाद होने लगी है। हजरत जकरिया उस वक्त 80-90s में थे, बच्चा नहीं था। बीबी मरियम के बिन मौसम के फल देखे। कहा, अच्छा अल्लाह इसको बिन मौसम का फल दे सकता है, तो औलाद भी तो एक फल ही होती है ना, तो अल्लाह तो मुझे भी बिन मौसम की औलाद दे। ऐसा कबूलियत का वक्त था और उससे पहले इबादत भी हो रही थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तो अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर तो परेशान होते कि 40 के बाद तो बच्चा पैदा ही नहीं करना, पकड़ो इसको ऑपरेट करा दो, ये हैंडीकैप बच्चा होगा। अल्लाह ने इतनी बूढ़ी बीवी को बच्चा दे दिया। आज ये भी एक बड़े मसले हो गए, 30-40 से ऊपर बच्चा पैदा हो, पहले ही सोच लेते हैं देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हालांकि अल्लाह के वादों पर यकीन रख के देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे बूढ़े जकरिया को औलाद दी, आगे जाके हम पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम को औलाद मिली। तो लिहाजा कहा, जब नेमतें मिलें तो याद करो। हम होते तो बेबी शावर बना रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते। अच्छा बस अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाए बेटा के बेटी है, ब्लू लूं के पिंक लूं, ये मसले आज हमारे, गम ये पड़ा हुआ है। पिंक लूं के ब्लू लूं, गुब्बारे लूं के फूल लूं, के ये क्या करूं वो करूं। उन्होंने कहा, अल्लाह जो देना दे दे, मैं तेरा शुक्र करूंगा। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा है, मरियम अल्लाह ने तुझे पसंदीदा किया और पाकिजगी अता की और तमाम और दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। ऐ मरियम अपने रब की ताबे फरमान बनकर रह और इसके आगे सर बसजूद हो, और जो बंदे इसके हजूर झुकने वाले हैं इनके साथ तू भी झुक जा। यहां जरा बीबी मरियम का किरदार एक अनमैरिड कुंवारी बच्ची के तौर पे देखिए। 12-13 साल की अर्ली उम्र थी और अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। क्यों चुना? क्योंकि मरियम का बचपन पाकीज़ा, उनकी जवानी पाकीज़ा। वो लड़कों की बातें नहीं करती थी, वो लिविंग टुगेदर्स को नहीं जानती थी। जिनकी जिंदगी में ऐसी गंदी करप्शन वाली चीजें ही नहीं थी, अल्लाह ने चुन लिया। आज भी जो चुना जाना चाहता है उसको बीबी मरियम की तरह अपने आप को पाकीज़ा रखना होगा। और एक हल्की सी बात कह दूं कि आज वो कौम जो मैरी से निस्बत जोड़ती है, आज उसकी पाकीज़गी और दामन का हाल देख लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, तन्हाई में फरिश्ते को आता देखकर मरियम कांप उठी, कहने की, चले जाओ तुम मेरे पास क्यों आ गए। आज उसी औरत से निस्बत लेने वाली कौम जब तक किसी का बॉयफ्रेंड उसके साथ ना हो उसको कामयाब औरत ना समझे। ये है वो तजाद जो आज बनी इसराइल यानी क्रिश्चियंस के अंदर भी आपको दिखेगा। नाम से वो खुद को ईसाई कह लें, क्रिश्चियन कह लें, नसारा कह लें, लेकिन अकायद उनके उन जैसे नहीं है। और कौमों पे जवाल जब आता है तो ऐसे ही होता है, नामों की हद तक नबियों से और उनके घर वालों से ताल्लुक रखते हैं। जैसे आज हम बीबी फातिमा का नाम बड़े प्यार से लेते हैं, लेकिन बीबी फातिमा वाला तर्ज अमल हम इख्तियार करने पर जरा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के जरिए से बता रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त मौजूद भी ना थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन होगा अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना आप उस वक्त हाजिर थे जब वो झगड़ा कर रहे थे। कितने वाजे तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप उस वक्त हाजिर नहीं थे जब ये सारे मामले हो रहे थे। पता क्या चला कि नबी सल्लम को दुनिया में आने से पहले ऐसे हालात की खबर नहीं थी जब तक अल्लाह ताला ने किसी बात को आप तक पेश ना कर दिया। फिर फरमाया, और जब फरिश्तों ने कहा है मरियम अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उनका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज्जज होंगे और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किए जाएंगे, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेंगे। इनका ये कलाम हम सूरत मरियम में पढ़ेंगे, इन्नी अब्दुल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और लोगों से गहवारे में भी कलाम करेंगे और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी। ये कहूलत की उम्र जो इधर लिखी है ना, कहला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ये उम्र नहीं आई थी, इससे पहले ही उनको आसमानों पर उठा लिया गया। तो ये हिस्सा इस बात की दलील है कि हजरत ईसा वापस दुनिया में आएंगे और लोगों से बात करेंगे, और वो एक मर्द साले होंगे। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ तक नहीं लगाया, जवाब मिला ऐसा ही होगा, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कि हो जा और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिले कलाम में कहा, और अल्लाह इसे किताब व हिकमत की तालीम देगा और तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा, और जब वो बहसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजा दंदे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। आप देखिए कि हजरत ईसा को जो मौजजा दिए गए, आपने देखा कि अक्सर का ताल्लुक तिब से था, क्योंकि उस दौर में तिब का बहुत रिवाज था। किसी भी नबी को वही मौजजा दिए जाते हैं जो उस दौर के लोगों के जहनों पर छाए होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूंकि इल्म का बहुत रिवाज था, अदब का रिवाज था, तो आपका मौजजा क्या है? कुरान, जिसको आज 1400 साल बाद भी कोई ना बदल सका। तो ये ना सोचिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कोई मौजजात नहीं दिए, आपका मौजजा तो चलता फिरता दुनिया में रहने वाला है। आज आप देखिए कि नसारा जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन सिफात की वजह से बहुत ज्यादा तिब के रास्ते से लोगों को दीन फैला रहे हैं अपने। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स मिशनरीज ने कायम किए कि जहां वो मरीजों को बुलाते हैं, फ्री खाना देंगे, दवाइयां देंगे, और शुरू में क्या करते हैं, उनको सिर्फ कहते हैं कि ग्लूकोज और इस तरह की बेजरर किस्म की दवाइयां देते हैं। कुछ दिन के बाद जब मरीज ठीक नहीं होता, फिर एक दिन बैठ के वो उसको प्रीच करते हैं। ऐसे ही तुम्हें पता है ना, कुरान में भी ये बात है, हजरत ईसा के पास मौजजात थे, वो बीमारों को ठीक करते थे। तो अगर तुम जीजस का जरा नाम ले लो, यानी ऐसे लफ्ज जो अल्लाह के लिए होने चाहिए जीजस के लिए बुलाते हैं, तो तुम्हें शिफा होगी। वो भोले भाले मुश्किलों में पड़े हुए लोग जब इस चीज को ले लेते हैं, तो उसके बाद वो उसको ओरिजिनल दवा दे देते हैं। जब ओरिजिनल दवा दी तो ठीक हो गए, और जब ठीक हो गए तो फिर क्या होता है, उसका माइंड बन जाता है कि अच्छा जीजस का नाम लिया था तो शिफा हुई, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इस्लाम से कुफर पे जाते हैं। आप अंदर खाते वो सारी कहानियां पढ़ के देखें जो इस वक्त इस्लाम से लोगों को हटाने के लिए हैं, तो आप खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि आज हम मुसलमान तो सो रहे हैं जिनके पास हक है, और जिनके पास कुछ भी नहीं सिर्फ मिथ है, वो दुनिया में कितनी मेहनतों से काम करें। उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, घरों में जो लिटरेचर वो भेजते हैं कितना महंगा और कितनी कोशिशों से, और वो चुन चुन के उन लोगों की कहानियां आप तक काम करते हैं जो पहले मुसलमान थे अब क्रिश्चियन हो गए। वजह क्या है? इसी किस्म की बातें हैं। मेरा और आपका ईमान क्या है कि अगर हजरत ईसा में ये खूबियां थी तो अल्लाह की दी हुई थी, वो उनके साथ थी, और आज दुनिया में अल्लाह ताला ने उनके साथ वो चीजें भी उठा ली। तो ऐसी चीजें कभी भी कहीं सुने तो उसे मुतासर होने की बजाय दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रख दे। फिर इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियों में क्या था, और मैं इस तालीम और हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे जमाने में मौजूद है, और वली उहिल्ला लकुम बादल लजी हुर्रिमा अलैकुम, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज उन चीजों को हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई थी। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, बस तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। यहाँ फिर समझ लीजिए, हजरत ईसा बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। बनी इसराइल के उलमा के अंदर जब दुनिया की मोहब्बत बढ़ी तो उन्होंने मसाइल को बदल दिया। शरीयत को एक तरफ तो बहुत मुश्किल कर दिया, क्योंकि जब किसी चीज को उसकी असल से हटाएंगे या तो बहुत हार्ड हो जाएगी या बहुत सॉफ्ट। इसको आप सोचिए केक बनाने से, सही टेम्परेचर पे सही तरह से चीज रखते हैं तो केक बहुत फ्लफी भी बनेगा, ऊपर से भी पकेगा, अंदर से भी पके। टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो सख्त हो जाएगा केक, और अगर बहुत बढ़ा के ऊपर से जला लें तो अंदर से कच्चा पानी का पानी रहेगा। यही दीन की बात है। जब दीनदार हजरात जो होते हैं वो इल्म में अपनी मर्जियां करते हैं, यही होता है। जब बनी इसराइल के अंदर ये आम हुआ, अल्लाह सुबहाना तला ने हजरत ईसा को भेजा। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हजरत ईसा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सेम है, अल्लाह के नबी, बस फर्क है कि पूरी दुनिया के लिए और क्यामत तक के लिए। हजरत ईसा ने आकर यहूदी उलमा की वो सारी कमी बेशियां जो उन्होंने उस वक्त के दीन में पहरी हुई थी उसको बदल दिया। इस वजह से फिर ज्यूज उनसे दुश्मन हो गए थे। आगे जाके अगर मौका मिला इस सफर में आगे, तो आपको रीजन भी बता दूंगी कि व्हाई दे ट्राई टू किल हिम। आपको पता किसी को तो हाथ खड़ा करें, हजरत ईसा को क्यों कत्ल करने की कोशिश की थी यहूद के उलमा ने? क्योंकि उन्होंने उनको सूद का कारोबार करने से रोका था, और बैतुल मकदस में बैठकर करते थे। उन्होंने कहा ये तो अब हमारे इकोनॉमी पे आ गया, अब इनको पकड़ो। वो कई और वजूहात के साथ इसको वजह बनाकर खत्म कर दिया। तो आपको बहुत सारी ममासलतें दिखेंगी कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए रिवाइवल ऑफ रिलीजन हुआ था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका यहाँ तस्करा किया। अब उनके लिए जो मामलात हुए, जो उनको दुनिया से ले जाने के लिए कोशिशें हुई, उसकी तरफ इशारा है। फलम्मा हस्सा ईसा मिन्हुम अल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि बनी इसराइल कुफ्र और इनकार पर आमादा हैं, तो उन्होंने कहा, कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी अल्लाह के आगे सर इताअत झुका देने वाले हैं। मालिक, जो फरमान तूने नाजिल किया हमने इसको मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की। फक्तुबना मा शाहिदीन, बस तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किल करने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया और उसी की तरफ इशारे हैं कि उनके साथ जो हवारी थे उन लोगों ने फिर उनका कैसे साथ दिया या उन्हीं में से किसी ने खयानत की। ये किस्सा डिटेल से पढ़ने वाला है, इस वक्त हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं इसकी, लेकिन यहाँ ये याद रखिए कि हक को पेश करने में अम्बिया कराम को अपनी जान तक खतरे में डालने पड़ी। अगर आज मैं और आप अपने दीन इस्लाम पर अमल करते हैं और बिलफर्ज अगर उसकी वजह से कोई हमारे ऊपर हालात मुश्किल हो भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जमाए रखे। फिर बनी इसराइल मसीह के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने लगे। जवाब में अल्लाह ताला ने भी अपनी खुफिया तदबीर की और ऐसी तदबीरों में अल्लाह ताला सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी जब उसने कहा कि ईसा मैं तुझे वापिस ले लूंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया उनकी माइयत से और इनके गंदे माहौल से और इनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को क्यामत तक इन लोगों पर बाला दस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार कर दिया। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। इस वक्त मैं इन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है, जिन लोगों ने कुफ्र इनकार की रविश इख्तियार की है इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार न पाएंगे, और जिन्होंने ईमान और नेकअमली का रवैया इख्तियार किया इन्हें इनके अजर पूरे के पूरे दिए जाएंगे। और खूब जान लो के जालिमों से अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता। इससे भी बड़ी कोई अल्लाह ताला की कुदरत कोई देख सकता है कि लोग किसी इंसान को कत्ल करना चाहें और अल्लाह ताला उसको ऊपर उठा ले। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की हिफाजत की, अल्लाह ताला अपने दीन इस्लाम की भी हिफाजत कर सकता है। आज भी आप देखिए कि उम्मत मुस्लिमा अगर अल्लाह ताला की इन सारी बातों पर नजर रखते हुए उस पर नजरें लगाएगी तो मदद हमारी होगी। पीछे का मेन कंट्रोल हमारे हाथ में। अल्लाह सुबहाना ताला किसी कौम की मदद कब करते हैं? जब वो उस मदद को डिजर्व करते हैं। जब डिजर्व करेंगे अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा और इसी तरह से दूसरे हालात की भी अंदर लेकर जाएगा। करना क्या है? इस किताब को आम करना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हम सबको फिर आखिर में देखिए बता दिया कि देखो ये कुरान जो तुम पढ़ने लगे हो, ये किताब जो इस वक्त तुम्हारी जिंदगियों में आ गई, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये छोटी किताब नहीं है। तुम इस वक्त कोई आम सी चीज नहीं पढ़ रहे, ये दुनिया का इल्म नहीं है कि जिसके लिए तुम सोचो कि मुझे पढ़ना है कि नहीं, कोई ऑप्शन है, कोई चॉइस है कि नहीं, बल्कि ये क्या है अगली आयतों में देखिएगा। ये आयत और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा और वो हो गया। यानी ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हैं? नौज बिल्ला, क्योंकि हजरत ईसा बिन बाप के पैदा हुए थे। तो सवाल पैदा होता है कि फिर हजरत आदम के बारे में क्या ख्याल है? उनकी तो माँ भी नहीं थी। इसी तरफ देखिए कि हजरत ईसा को इसलिए अगर पूछते हैं कि हजरत ईसा बेजान को जानदार में पैदा करते थे तो हजरत मूसा को भी पूजे, क्योंकि उनका भी बेजान ऐसा जो था वो जब हाथ में लेते या पकड़ते या फेंकते तो वो चलते फिरते सांप में बदल जाता। तो बात यह है कि हक से जब लोग पलटते हैं तो वो इसी किस्म की बातें रख लेते हैं। फरमायल हक को मे रबी का फलातक मिनल मुमतरीन, ये असल हकीकत है जो आपके रब की तरफ से बताई जा रही है और आप इन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्मा जाने के बाद अब जो कोई मामले में तुमसे झगड़ा करें तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या हो हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। इन्ना हाज़ा लहुल क़िससुल हक, ये बिल्कुल सही वाकयात हैं। कौन से? ये सब हजरत ईसा से रेलिवेंट जो पढ़े। अब जिसको इंजील पढ़ने का शौक है उसको कुरान में आ गई ना वो बातें, यही कुछ तो अगर पढ़ना था सच तो उसमें पढ़ सकते थे। और हकीकत यह कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बालातर और जिसकी हिकमत निजाम आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो इनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह ताला तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ है। यहाँ पे अब इनका किस्सा थोड़ा सा पूरा हुआ।